कविता संख्या 15। कविता शहर का व्याकरण ठीक करने के लिए एक हल्ला गाड़ी गश्त कर रही है। चुनाव के इश्तहार से निकलकर एक आदमी सड़क पर आ गया है। आसमान में सन्नाटा छा गया है। शाम के 7 बजे हैं। भाषा के चौथे पहर में मैं प्रभु हूँ का चेहरा उतार कर वह विदूषक उस शोकेस के सामने खड़ा है जिसमें जूते पान की गिलौरियों की तरह सजे हैं और एक रर्रा विदेशी पर्यटक का पीछा कर रहा है। उसकी जुबान पर अपने यहाँ गाए जाने वाले जंगल गीत का प्यारा सा छंद है। आगे सड़क बंद है। लाल बत्ती जल रही है। फरमाइशी गीतों की परिचित आवाज़ में सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है। व्याख्या व्याकरण शब्द भाषा अनुशासन का शब्द है जो शब्द वाक्य विन्यास का सैद्धांतिक नियम विधान प्रस्तुत करता है। अपने व्यापक संदर्भ में व्याकरण नियम सिद्धांत या कानून विधान के लिए नवलेखन में प्रयुक्त हुआ है। शहर का व्याकरण शीर्षक रचना में भी रचनाकार धूमिल ने शहर के नियम कानून व्यवस्था के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कवितांश में रचनाकार एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह शहर में होते हुए के अंश विशेष को अपनी व्यंग्यात्मक विचार अभिव्यक्ति के रूप में इस प्रकार प्रकट करता है कि शहर का व्याकरण अर्थात कानून व्यवस्था ठीक करने या रखने के लिए एक हल्ला गाड़ी यानी लाउडस्पीकर पर बोलते हुए एक गाड़ी नगर की सड़कों पर इधर से उधर गश्त लगा रही है। व्यंग्य यह है कि क्या ध्वनि विस्तारक यंत्र पर ऊंची आवाज में बोल देने से शहर की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन जब आदमी अपनी समस्या हल करने के लिए सड़क पर आ जाता है तो उस पर काबू पाना कठिन होता है। और अब ऐसा ही हुआ है। जो आदमी अब तक इश्तहारों में ही बंद था अब सड़क पर आ गया है। आदमी के सड़क पर आते ही सारे आसमान में सन्नाटा छा जाता है। शाम के 7 बजे हैं अर्थात संध्या के बाद रात्रि के अंधकार का माहौल गहराता जाता है। तब भाषा के चौथे प्रहर में अर्थात मुखरता जब मौन होने लगती है जब निंद्रा रूप में आत्मलय व्यक्ति के अहंकार अर्थात मैं प्रभु हूँ के मुखौटे को उतार फेंकती है तब विदूषक रूप में उसका सही चेहरा सामने आ जाता है। पृष्ठ संख्या 111। और जैसे ही व्यक्ति अपनी असलियत में आता है तो पाता है कि वह उस शोकेस के सामने खड़ा है जिसमें जूते ही जूते पान की गिलौरियों की तरह सजे हों। अर्थात मुखौटा उतारते ही आदमी के सामने असलियत कुछ और होती है। शहर के उसी माहौल में एक रर्रा यानी एक कुमुक रेला विदेशी पर्यटक का पीछा करते दिखाई देता है शायद उसकी अनियमितता या नैतिकता पकड़ने के लिए। वह रर्रा उस पर्यटक का पीछा करते हुए अपने यहाँ गाए जाने वाले जंगल गीता का कोई प्रिय छंद गाते हुए आगे बढ़ रहा है अथवा उसका पीछा कर रहा है। आगे बढ़ते हुए वह देख रहा है कि आगे सड़क बंद है अर्थात सामने लाल बत्ती जल रही है। वहीं वह सुन रहा है कि फरमाइशी गीतों में परिचित आवाज़ आ रही है कि सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है। अर्थात इस प्रकार का शहर का व्याकरण है जहाँ एक स्थिति घटना या शब्द भाषा का तारतम्य दूसरी स्थिति घटना या शब्द भाषा के किसी प्रकार का मेल नहीं खाता परस्पर कोई संगति नहीं दिखती जहाँ स्थितियों घटनाओं और कथनों में। कविता अब हर चीज़ का एक नाम है। लोगों की सुविधा के लिए बनिया सच्चाई है। यह महंगाई है जिसने बाजार को चमका दिया है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं धक्का दे रहे हैं खा रहे हैं और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं। मगर सुनो तुमने अपने कुत्ते को दिन में क्यों खोल दिया है इससे पहले कि वह पकड़ लिया जाए। और चीड़ फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए अस्पताल में हलाल हो अगर तुम उसे नगर पालिका की नज़र से बचाना चाहते हो उसके गले में एक पट्टा डाल दो। सचमुच मजबूरी है मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। व्याख्या कविता के अंतिम अंश में रचनाकार शहर के उक्त माहौल में अपने अनुभवों को निष्कर्ष की तर्ज पर महंगाई की मूल प्रवृत्ति पर विचार देता हुआ कहता है कि अब चीज़ें चीज रूप में जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक हो गई है। ऐसा नामकरण का विधान लोगों को सुविधा देने के लिए हुआ है, जैसे बनिया लाभ कमाने वाला वर्ग महंगाई के लिए एक सच्चाई बन गया है। वह अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से सारे बाजार को, पूरे उपभोक्ता समाज को चकमा देकर अपना लाभ कमाता है। उधर सारा शहर लोगों के आने जाने का दूसरा नाम बन गया है। लोगों में परस्पर धक्का मुक्की होती है, वे एक दूसरे को धक्का देते ही नहीं, खाते भी हैं। यही नहीं, भीड़ का सुख उनकी खुशी का कारण भी बनता है। तभी दृश्य को एक भय से जोड़ते हुए लेखक रचना में संवाद के द्वारा एक नई संवेदना जोड़ता है। वह प्रतिपक्ष से कहता है कि जिन कुत्ते तुम रात अंधेरे में या पर्दे में छोड़कर लोगों को भयभीत किए रहते थे, उन्हीं कुत्तों को तुमने दिन में क्यों छोड़ दिया है? अर्थात खुलेआम क्यों भय का वातावरण बना रहे हो? देखो, तुमने जो कुत्ता छोड़ा है वह न्याय व्यवस्था के तहत पकड़ लिया जाएगा। इसलिए जब तक वह पकड़ा न जाए और चीड़फाड़ की किसी अपराधी धारणा को सिद्ध करने पृष्ठ संख्या 112 के लिए किसी अस्पताल में हलाल ना कर दिया जाए, उसे पकड़कर अपने काबू में करो। यदि तुम नगर पालिका के उन लोगों की नज़र से उसे बचाना चाहते हो जो फालतू पशुओं को पकड़कर बंद कर देते हैं और जिस पर तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो तुम अपने कुत्ते को पकड़ लो। और फिर भी तुम उसे छुट्टा रखना चाहते हो तो उसकी गर्दन में अपनी पहचान का एक पट्टा डाल दो। लोग समझ जाएंगे कि यह अमुक का कुत्ता है। तुम समझते हो कि यह सचमुच मजबूरी है, तो मित्र मेरा कहना यह है कि पालतूपन की यह निशानी मजबूरी नहीं, जीने की आवश्यकता है। आज गले में किसी के होने की निशानी के रूप में पहचान एक अनिवार्यता बन गई है। आज जीने के लिए पालतू होना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए कवि व्यंग्य में कहता है कि जीने के लिए किसी न किसी की पट्टी गले में लटकाए रहना आवश्यक हो गया है।